How do we influence people?
हम लोगों को प्रभाव कैसे डालते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं लोगों को?
By the truth and by our life.
सत्य के द्वारा और अपने जीवन के द्वारा.
What we say and what we do.
जो हम कहते हैं और जो हम करते हैं उसके द्वारा.
We must preach the truth.
हमें सत्य का प्रचार करना चाहिए.
And we must be a godly example.
और हमें लोगों के सामने एक एक ईश्वर का प्रभु का भय मानने वाला उदाहरण होना चाहिए.
We call people to obey the truth.
हम लोगों को बुलाते हैं कि वो सत्य का पालन करें.
And we call people to follow our example.
और फिर हम लोग बुलाते हैं कि वे हमारे उदाहरण का पालन करें.
Paul says again and again, follow my example.
Paul बार बार कहता है कि मेरे उदाहरण का अनुकरण करो.
Your life must be an example.
आपका जीवन को एक उदाहरण होना चाहिए.
Not just on Sunday.
केवल रविवार के दिन नहीं.
But every day in every place.
लेकिन प्रत्येक दिन सब जगह.
So that your wife and your children.
ताकि आपकी पत्नी और उनके बच्चे.
Your friends.
और आपके मित्र.
And the whole world.
और संपूर्ण संसार.
Can see something different about your life.
और वो आपके जीवन के बारे में कुछ भिन्न अलग देख सके.
And so Paul says, look at me.
तो पौलुस कहता है मेरी ओर देखो.
So we have been trying to look at the life and the doctrine and the ministry of the Apostle Paul.
तो हम पौलुस से पौलुस के जीवन सिद्धांत और सेविकाई को देखने का प्रयास कर रहे हैं.
And we're asking these questions.
और हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं.
How did he live?
उसने अपने जीवन कैसे व्यतीत किया?
What did he preach?
उसने क्या प्रचार किया?
How did he minister?
उसने सेविकाई कैसे की?
This can be a good example and pattern for us.
ये हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकता है, हमारे लिए अच्छा नमूना हो सकता है.
First we looked at his background and conversion.
पहले हमने उसकी पृष्ठभूमि को देखा और उसके हृदय परिवर्तन की.
Now we're looking at his life and his character.
अब हम उसके जीवन को देखते हैं और उसके चरित्र को देख रहे हैं.
And we have said first of all that he had a holy and a pure life coming out of a good conscience.
और हमने कहा था कि उसका एक पवित्र और शुद्ध जीवन एक शुद्ध विवेक से उत्पन्न हो रहा है.
And if you're going to be useful, you must keep a good conscience.
और अगर आप उपयोगी होना चाहते हैं तो आपका विवेक अच्छा होना चाहिए.
Not just outward morality,
केवल बाहरी नैतिकता नहीं,
but inward purity,
लेकिन भीतरी शुद्धता.
Your life must be a holy example.
आपका जीवन एक पवित्र उदाहरण होना चाहिए.
Number two,
दूसरी बात,
you must have a life. Paul had a life characterized by true love and deep compassion.
और दूसरी बात जो हम पौलुस के जीवन के बारे में देखना चाह रहे हैं कि उसके जीवन में उसका जीवन गहरे प्रेम और दया से परिपूर्ण था.
Paul was not only a man of true purity, he was a man of deep affection.
वो केवल एक पवित्रता का और शुद्धता का व्यक्ति नहीं था, लेकिन वो एक बहुत ही गहरे
And this love and compassion and affection motivated and moved him.
और ये जो प्रेम उसके भीतर था, जो दया की लोग प्रति और जो स्नेह था, भावनाएं की लोग प्रति, ये उसको बाध्य करता था कार्य करने के लिए.
And if you want to influence people, you influence them by your life and your love.
और अगर आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो आप उनको प्रभावित करते हैं अपने प्रेम के द्वारा और अपने जीवन के द्वारा.
If you want to influence people, I told you before, you must have their heart and their conscience.
और हमने आपको पहले बताया था, अगर आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो उनका जीवन, उनका हृदय और उनका विवेक आपके पास होना चाहिए.
It's not enough to have their ear and their mind.
अब खाली उनके कानों को सुनना, उनके मस्तिष्क को सुनना काफी नहीं है.
If you want to have an influence on people, you must reach their heart and you must reach their conscience.
अगर आप उन लोगों तक प्रभाव करना चाहते हैं तो आपको उनके हृदय को छूना है और उनके जो विवेक है उन तक पहुंच होनी चाहिए आपकी.
How do you reach men's conscience?
कैसे आप लोगों के विवेक को प्रभावित करेंगे? कैसे
करेंगे? By your life and character.
आप लोगों के विवेक और उनके हृदय को प्रभावित करेंगे अपने पवित्रता के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा.
How do you reach men's hearts?
आप किसी व्यक्ति के हृदय को कैसे पहुंचेंगे?
By your love and compassion.
अपने प्रेम के द्वारा, अपनी दया करुणा के द्वारा.
When they see your life,
जब वो आपके जीवन को देखेंगे या पवित्र है
नो यू आर ए होली एंड ब्लेमलेस मैन
और वो जानते हैं कि आप एक पवित्र और निर्दोष व्यक्ति हैं
एंड देयर ओन कॉन्शियंस दे टेस्टिफाई दैट यू आर ब्लेमलेस
और जब वो अपने विवेक अपने अंतर अंतर मन में कहते हैं कि तुम निर्दोष हो शुद्ध हो
एंड इफ दे बिलीव यू आर रियल दे विल लिसन टू यू
और अगर वो ये विश्वास करेंगे मानेंगे कि तुम असली हो वास्तविक हो सच्चे हो तभी तुम्हारी
यू डोंट हैव अ मैन्स कॉन्शियंस यू कैनॉट इन्फ्लुएंस हिम
अगर हमारे आपके पास किसी व्यक्ति का विवेक तक पहुंच रही हमारी आपकी तो वो लोग हमारी नहीं सुनेंगे आपकी नहीं सुनेंगे
Paul said we commend ourselves to every man's conscience in the sight of God
और पौलुस कहता है कि परमेश्वर की निगाह में हमने अपने आप को प्रत्येक लोगों के विवेक के हाथ से सौंप दिया उन्होंने देख लिया हम कौन हैं
We must give men's conscience
और हमें लोगों के विवेक तक पहुंच जाना है उसको पा लेना है
Number two
दूसरी बात
We must get men's hearts
और हमें लोगों के हृदय को भी पा लेना है
And how do we get men's hearts
और कहते हैं हम लोगों के मनो हृदय को पा लेना
है Passion and affection.
हम अपने प्रेम के द्वारा अपनी करुणा के द्वारा जैसे अपने अपने स्नेह के द्वारा हम उनको उनको पहुंच पाते हैं
If we don't love people,
अगर हम लोगों से प्रेम नहीं करेंगे
we don't have compassion for people,
अगर हम लोगों पे दया नहीं करेंगे
we don't have any affection for people,
अगर हमारे अंदर कोई भावना ही नहीं है लोगों प्रति प्रेम की
people will know it,
तो लोग जान जाएंगे
they will not trust you,
और वो हम पे
they will not open their heart,
और अपने हृदय को हमारे तक खोलेंगे
they will not believe you,
वो हम पे आपका विश्वास नहीं करेंगे
Listen to you.
वे सुन तो लेंगे हमारी बात
Yes, yes, amen.
वो कह लेंगे हाँ हाँ आमीन
But you cannot get their heart.
लेकिन आप उनके हृदय को नहीं पा पाएंगे
I told you before.
मैंने आपको पहले बताया
If you're going to open men's heart.
अगर आप लोगों के हृदय को खोलना चाहते हैं
You gotta have a key.
तो आपके पास एक चाबी होनी चाहिए
What is that key?
और वो चाबी क्या होगी हृदय की
Problem with many preachers.
They
have the truth.
उनके पास सत्य तो
है. They have gift.
उनके पास बताना है.
They have education.
उनके पास शिक्षा है.
They have zeal.
उनके पास जोश है.
They have knowledge.
उनके पास ज्ञान है.
But they don't have the key to men's heart.
लेकिन उनके पास पुरुषों के हृदयों की चाबी है ही नहीं.
Paul was a man of deep affection.
पौलुस एक व्यक्ति था जो बहुत ही गहरे स्नेह प्रेम का व्यक्ति था.
He was a man that wept.
वो एक ऐसा व्यक्ति था जो रोता था
He was a man that hurt.
वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको चोट लगी थी
He was a man that had deep feeling.
वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके गहरी भावनाएं थी
And he calls us to look at him.
और वो बुलाता है वो आपको कहता है कि मेरा अनुकरण करो
He said, you saw my love.
उसने कहा कि तुमने मेरे प्रेम को देखा है
Felt my love.
तुमने मेरे प्रेम को जाना है
You knew my love.
तुम मेरे प्रेम को जानते थे
You can't say that to men.
अगर हम और आप ऐसा लोगों से नहीं कह सकते
You'll never have their heart.
तो हमारे और आपके पास उनका हृदय कभी हो नहीं सकता
India's great need.
अब भारत की बड़ी आवश्यकता
Truth.
सच्चाई
And love.
और प्रेम
You speak it.
हम बोले उनको
And you show it.
और फिर हम उनको दिखाएंगे दर्शाएंगे
Let's look at a few. Examples of this.
आइए हम कुछ उदाहरणों को देख रहे हैं यहाँ पे
We're talking about Paul's life.
हम पॉल के जीवन के बारे में बात कर रहे
हैं I know this is very simple and very basic.
मैं जानता हूँ कि बहुत ही साधारण है बड़ी बुनियादी बात है
But this is very important.
और किंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है
Because what does Paul say?
क्योंकि पॉल ने क्या कहा
1 Corinthians 13.
पहला नीति करोगे तो तेरा
क्या Verses 1, 2, and 3.
उसके पहले दूसरे तीसरे पद है
The most frightening and terrifying verses in the Bible for a preacher.
ये बाइबल में एक प्रकार
बहुत ही शराब
के पद है यहाँ से क्या कहना तेरा क्या पहले
If I have the tongue of men and angels but have not love, it profits me nothing.
वो कहता है यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत की भाषाएं बोलूं प्रेम ना रखूं तो मैं कोई फायदा नहीं कोई क्या फायदा उसका
If I have the gift of prophecy and know all mysteries and knowledge.
शरण जो तेरा दिया है उसका दूसरा पद यदि मुझे नबूवत करके वरदान प्राप्त हो मैं सब चीजों के ज्ञानों में जानूं तो क्या फायदा
If I have faith even to remove mountains but have not love, it profits me nothing.
और यहाँ तक मैं पूर्ण विश्वास रखूं कि पहाड़ी का जाने के लिए प्रेम रखूं तो कुछ भी नहीं कोई फायदा नहीं
If I give all my possession to be the poor and even give my body to be burned but have not love.
और चाहे मेरी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं और अपने देह को भी जलाने तुम्हारे जीसस पर जो प्रेम रखो तो कोई लाभ नहीं.
What is Paul saying?
तो पॉल क्या कह रहे हैं?
Knowledge is not enough.
वो कह रहे हैं ज्ञान काफी नहीं है.
Faith is not enough.
और वरदान बहुत नहीं है.
Faith is not enough.
और विश्वास काफी नहीं है.
Zeal is not enough.
और जोश काफी नहीं है.
Sacrifice is not enough.
और बलिदान त्याग भी काफी नहीं है.
Preaching is not enough.
और प्रचार काफी नहीं है.
Paul said I can do all these things.
तो पॉल कह रहे हैं ये सारी चीजें मैं कर सकता हूं.
I don't have love.
लेकिन अगर मेरे पास प्रेम नहीं
useless.
So बेकार बर्बाद कुछ भी नहीं कोई फायदा नहीं.
Paul said, look at me.
Paul said, मेरी ओर देखो.
Listen to me.
मेरे को सुनो.
Follow me.
मेरे पीछे आओ.
You saw my love.
तुमने मेरे प्रेम को देखा.
You saw its light.
तुमने उसकी ज्योति को देखा.
And you felt its heat.
और तुमने उसके तेज को देखा उसके गर्मी को देखा.
Paul was a man of deep affection.
Paul was a gehre sneh ka vyakti tha.
Let's look at several verses.
Aaiye hum aur padho dekhte hain.
Back in the book of Romans.
Romans ki patri mein.
Very familiar verse.
Aap hi Romans ki patri jo bahut hi jaan pehchani hai.
Chapter 9.
Navadhyay.
In Romans chapter 9, Paul talks about a great truth, the sovereignty of God in the salvation of sinners.
और पौलुस रोमियो के नवे अध्याय में एक बड़े सत्य का वर्णन करता है जो कि पापियों के उद्धार में परमेश्वर की सार्वभौमिकता के सत्य का वर्णन करता है.
But listen carefully.
लेकिन ध्यान सुनिए.
Some men can preach the truth.
कुछ लोग तो सत्य का प्रचार करते हैं.
About God's sovereignty.
वो परमेश्वर की सार्वभौमिकता का प्रचार करते
हैं.
और मनुष्य के पाप का.
Talk about the work of Christ.
और मसीह के कार्य का बात करते हैं.
Talk about God's election.
और परमेश्वर के चुनाव का बात करते हैं.
And their eyes are dry.
और उनकी आंखें लेकिन सूखी होती
हैं. And their heart is cold.
और उनके हृदय तो ठंडे होते हैं.
Paul didn't lecture about God's sovereignty like a seminary professor.
Paulus ne parmeshwar ke chunav ke bare mein ek bible vidyalay ke shikshak ke samaan nahi sikhaya iski baat hai.
Paul taught about God's sovereignty with tears in his eyes and a burden in his heart.
Paulus jab is parmeshwar ke chunav ke bare mein baat kar raha hai to apni aankhon mein uske aansu hain aur uske hriday mein ek bada bojh hai uske saath banan karta hai inka.
Look at verse 1.
Dekhiye pehle pad rahe
hain yahan. Said I tell the truth in Christ, I'm not lying.
Wo kehta hai main masih mein sat keh raha hu main jhoot nahi bol raha.
Notice what he said.
Aur kya nahi kya kehta hai.
My conscience bears witness with me in the Holy Ghost.
Wo kehta hai ki mera vivek bhi pavitra atma mein is baat ki sakshi de raha hai.
What is his conscience telling?
Aur kya kehta hai uska vivek.
Verse 2.
Aur dusre pad mein.
I had great sorrow and unceasing grief in my heart.
Aur main atyant dukhi hu mera hriday nirantar shokit rehta hai.
He says my sorrow is deep and it is wide.
कि मेरा दुख बहुत गहरा है और मेरा हृदय बहुत शोकित है.
It's not a shallow emotion.
ये उतना भावना नहीं है.
It's not just one day of the week.
ये केवल हफ्ते में एक दिन जो भावना होगी उसको ये नहीं है.
He said, I'm telling you the truth.
ये कह रहे मैं कुछ सत्य बात.
I'm not lying.
मैं झूठ नहीं बोल
रहा. My conscience bears witness.
मेरा विवेक इस बात की दुआई
है. In my heart.
कि मेरे हृदय में.
I have deep sorrow.
कि मेरा दुख बहुत ही गहरा है.
Have unceasing grief.
और मेरे बिना जो दुख है वो शोक है वो रुक नहीं रहा है.
Why?
क्यों?
Verse 3. I could wish that I were accursed, separated from Christ for the sake of my brethren.
वो कहता है कि काश मैं स्वयं ही अभिशप्त होकर मसीह से अलग हो जाता अपने भाइयों के लिए.
Paul says, I know this cannot be.
और पौलुस कहता है कि मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं हो सकता.
I'm secure in Christ.
मैं तो मसीह में.
I'm united to Christ.
मैं मसीह से जुड़ चुका
हूँ. I'm saved by Christ.
मैं तो मसीह से.
I can never lose my salvation.
और मैं अपना उद्धार कभी खो नहीं सकता.
But I would be willing to be accursed and separated from Christ if it meant the salvation of my brethren.
लेकिन अगर मेरे भाइयों का उद्धार संभव हो सकता था तो मैं उनके लिए मसीह से अलग होने के तैयार हूं और शापित होने के तैयार हूं.
But there was someone that was separated from God and accursed by God.
लेकिन आपको मालूम होना चाहिए यद्यपि पौलुस ऐसा नहीं कर सकता था लेकिन कोई और दल था जो परमेश्वर से अलग कर दिया गया और परमेश्वर के द्वारा शापित किया गया.
Who was that?
और कौन था वो व्यक्ति जिसके साथ ऐसा हुआ?
What is Paul saying?
तो फिर पौलुस क्या कहता है?
The love of Christ.
मसीह का प्रेम
moves
मुझे बाधित करता है, बाध्य करता है.
And I would be willing to give up everything.
और मैं सब कुछ देने को तैयार करता हूं.
That they might be saved.
ताकि वे लोग बच जाएं.
Paul didn't give a dry theological lecture on doctrine.
Paul ने सिद्धांत के ऊपर एक सूखा धर्म विज्ञान पर आधारित एक भाषण नहीं दे दिया वहां.
He told the truth.
उसने सत्य अवश्य बताया.
Israel rejected their Messiah.
इसराइल ने अपने मसीहा का तिरस्कार कर दिया था.
But the purposes of God have not failed.
लेकिन परमेश्वर के जो उद्देश्य थे वो विफल नहीं हो गए.
There is an Israel within Israel.
क्योंकि इसराइल के भीतर एक और इसराइल है.
There is a spiritual Israel within physical Israel.
क्योंकि शारीरिक इसराइल के भीतर एक आत्मिक इसराइल है.
And God has a secret purpose.
और परमेश्वर के उनके लिए एक गुप्त उद्देश्य अभिप्राय है.
His purposes have not failed.
और उनके उद्देश्य विफल नहीं हुए.
And they have rejected Christ.
और उन्होंने तो मसीह को तिरस्कार किया.
According to God's eternal purpose.
और परमेश्वर के अनंत काल के अभिप्राय के अनुसार.
But if I could give my life, I would want them to be saved.
लेकिन पौलुस कहता है अगर मैं अपना जीवन दे सकता था मैं चाहता हूं कि वे बच जाएं. मैं आपके प्रश्न पूछना चाहता हूं.
Have you ever felt that way about another Indian?
क्या आपने जिस तरह से पॉलिस अपने यहूदी भाइयों के बारे में सोचता है क्या आपने कभी अन्य भारतीय भाइयों के बारे में ऐसा सोचा है महसूस किया है?
The problem with many preachers.
बहुत सारे प्रचारकों के साथ समस्या ये है.
They have the truth.
उस पर सत्य तो है.
They're zealous.
और वे जोशीले भी हैं.
They have knowledge.
और उनके पास ज्ञान भी है.
They understand right doctrine.
और वे सही सिद्धांत भी समझते हैं.
But their eyes are dry.
लेकिन उनकी आंखें अंधी हैं.
And their heart is cold.
और उनके हृदय जो है पत्थर के समान हो गए, ठंडे हो गए.
Paul wasn't like that.
पौल को ये अच्छा नहीं लगेगा.
Love.
Pray.
Compassion.
दया, करुणा.
Second Corinthians.
दूसरा कुरिन्थियों में देखिए.
We're talking about Paul's character.
हम पौलुस के चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं.
He was a man characterized by deep emotion.
वो एक ऐसा व्यक्ति था जो गहरी असली भावनाओं के द्वारा वो जाना पहचाना जाता था.
Chapter 2.
दूसरा अध्याय.
Second Corinthians.
दूसरा कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय.
Chapter 2,
दूसरा अध्याय,
verse 4.
चौथा पद.
He said, out of much affliction and anguish, I wrote to you with many tears.
वो कहता कि मैंने तुम्हें बड़ी क्लेश और हृदय वेदना से आंसू बहा बहा के लिखा था.
He didn't sit down and just write a theological lecture.
उसने बैठ करके केवल एक धर्म विज्ञान पर आधारित भाषण नहीं लिख दिया उनको.
He said, in my heart, I had much affliction and anguish.
वो कहता कि मेरे हृदय में बड़ा दुख है, बड़ा क्लेश है.
And in my eyes, I had many tears.
मेरी आंखों में बहुत आंसू बह रहे थे.
Not that you would be made sorrowful, but that you might know the love I had especially for you. If you love people, you'll tell them the truth. If you love people, you won't tickle their ears. If you love people, you'll be willing to wound them. Not because you want to punish them.
उनको सजा देना
चाहते
क्योंकि इसलिए क्योंकि आप उनके प्राणों की चिंता करते हैं.
Paul said we speak the truth in love.
पौलुस कहता है हम प्रेम को सत्य को प्रेम में होकर के बताते हैं.
When you read verse 4,
और जब आप चौथे पद को पढ़ते हैं,
it's full of emotion.
ये भावनाओं से परिपूर्ण है.
Do you have that kind of affection?
क्या आपके अंदर इस तरह की भावना है?
So that you might know the love I have for you.
परंतु इसलिए कि तुम उस प्रेम को जान सको जो मुझे तुम्हारे प्रति विशेष तौर पर तुम्हारे प्रति है.
Paul was a real man.
पौलुस एक असली वास्तविक आदमी था, पुरुष था, जन था.
Deep affection.
इसके अंदर गहरा स्नेह था लोगों के प्रति.
Look in chapter 12.
यहाँ पे 12 अध्याय को देखिए मैं सारा.
Verse 14.
यहाँ पे 14 पद देखिए.
He says here a third time, I'm ready to come to you, and I don't want to be a burden to you. He said, I'm not interested in what you have. I'm interested in you. Verse 15, I will most gladly spend and be expended for your soul. If I love you the more, am I to be loved the less? Paul said, I love you. I care about you. I want you to love me. And I'm telling you the truth. And I will give my life. Paul just wasn't some professor in a school sitting high up above people.
और पॉल किसी विद्यालय में कोई खाली अध्यापक नहीं था जो ऊपर बैठे के लोगों को नीचे की ओर देख रहा
है. He was deeply emotionally involved in their life.
वो एक बड़ी गहराई के साथ उनके जीवनों में भावनात्मक रीति से उससे जुड़ा हुआ था, मिला हुआ था.
He wanted people to love him.
Nah,
he didn't have to have people love him. But he said, I love you the more. You love me less. I've given my life for you. True love. Three things.
तीन बातें.
An affection of the heart.
एक हृदय का स्नेह.
A commitment of the will.
और इच्छा शक्ति का समर्पण.
And a sacrifice of the life.
और जीवन का त्याग बलिदान.
He said, I will gladly spend and be spent for your soul.
वो कह रहे मैं बड़े हर्ष के साथ तुम्हारे लिए खर्च किया जाऊंगा, खर्च हो जाऊंगा तुम्हारे प्राणों के लिए.
And he says, look at my love.
वो कह रहे मेरे प्रेम की ओर देखो.
Paul's life was characterized by purity.
और पॉल का जीवन का एक लक्षण था कि उसके अंदर शुद्धता थी.
एंड बाय पैशन.
और उसके अंदर अधिक अधिक इच्छा थी, प्यार था.
Look in 1 Thessalonians.
पहले थिस्सलुनीकियों को देख लीजिए.
We're talking about Paul's love.
हम पॉलस के प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं.
He is describing his ministry in chapter 2.
वो अपनी सेवकाई को उनके मध्य में वर्णन कर रहा है.
Now we've looked at this passage before.
हम इस स्थल को पहले देख चुके हैं.
We should see how Paul does ministry.
हमें देखना चाहिए कि पौलुस कैसे सेवकाई को करता है.
We'll look at this some tomorrow.
और हम इसको कल कुछ थोड़ा और देखेंगे.
But notice chapter 2 verses 6 through 8.
और ध्यान दें यहाँ पे दूसरा अध्याय जो तो पहले थिस्सलुनीकियों के दूसरा अध्याय छह पत्र के आठ पद तक.
Especially verse 8.
और विशेष तौर से आठवां पद.
Notice what he said.
ध्यान दें क्या कह रहे हैं.
Having a fond affection for you.
वो कहता है कि तुम्हारे प्रति ममता होने के कारण.
We were willing to give you not only the gospel but our own lives.
वो कहता है कि हम ना तुम्हें सिर्फ परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए पर हमने प्राणों को भी तुम्हारे लिए देने
की बात
है. क्यों?
Because you had become very dear to us.
क्योंकि तुम हमारे लिए अत्यंत प्रिय बन गए थे.
Paul didn't just go to Thessalonica, give a little lecture, leave and forget them.
और पौलुस सिर्फ वहां पे थिस्सलुनीकियों में नहीं चला गया और अपने एक
I gave you my heart. You can preach for 100 years.
आप 100 साल तक प्रचार कर सकते हैं.
But if you don't have love,
लेकिन अगर आपके पास प्रेम नहीं है,
your influence will be small.
तो आपका जो प्रभाव होगा बहुत ही छोटा होगा.
Paul's life was characterized by love.
पौलुस का जो जीवन था वो प्रेम के द्वारा ही चित्रण था, उसको पता चल सकता था.
And we could look at many other verses, but we'll stop there.
हम और भी अन्य पदों को देखने चले, लेकिन हम रुक जाएंगे यहाँ पे. अब प्रश्न हम आपके लिए ये है यहाँ पे.
Who do you love?
आप किससे प्रेम करते हैं?
How do they know?
तो कैसे मालूम उनको कि आप उनसे प्रेम करते हैं?
What is the evidence?
अब प्रमाण क्या है कि वे लोग जानते हैं आपके प्रेम के बारे में?
When someone has true love,
जब किसी के पास वास्तविक प्रेम होता है,
he has a deep affection in his heart.
तो फिर उनके हृदय में एक बहुत ही गहरा स्नेह होता है.
Paul says, "I have a fond affection for you."
वो कहता है, बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बड़ा ही स्नेह भरा हुआ प्रेम है तुम्हारे.
He has a commitment. It is a commitment of the will.
वो एक ऐसा है जो हमारे इच्छाओं का उनके प्रति समर्पण होता है.
He said, "We were." Willing.
वो कहते हैं कि हम इस बात के लिए तैयार थे.
Love is not just an emotion.
प्रेम केवल भावना ही नहीं है.
It is a commitment of the will.
लेकिन ये हमारी भावनाओं और हमारी इच्छाओं का समर्पण
है. More than that.
लेकिन ये उसे बढ़कर भी
है. It is demonstrated.
ये प्रदर्शित किया जाता है.
We gave you not only the gospel, we gave our very life.
हमने केवल तुमको सुसमाचार नहीं दे दिया, हमने तुम्हें अपना पूरा जीवन दे दिया.
Love is an affection.
प्रेम
commitment.
और वो समर्पण है.
It is a sacrifice.
और वो त्याग है.
And Paul's life is a living testimony to that reality.
और इस सत्य का पौलुस का जीवन जीता हुआ गवाही है.
Who do you love?
आप किसे प्रेम करते हैं?
How do they know?
कैसे मालूम उनको कि आप उनसे प्रेम करते हैं?
What is the evidence?
क्या है प्रमाण?
There was a famous English Christian many years ago.
बहुत समय पहले एक बड़े ही प्रसिद्ध अंग्रेज मसीही थे.
His name was William Booth.
उसका नाम था William Booth.
And he led what is called the famous Salvation Army.
और उसने एक 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 सेवा आरंभ जिसका नाम था Salvation Army.
And he sent two workers to a very hard district in London.
और उसने लंदन में दो कार्यकर्ता भेजे जो बड़ी कठिन जगह थी लंदन में.
And after about 6 months, they sent back a message to him.
और अब 6 महीने के बाद उन्होंने लंदन से वापस उसको एक संदेश
भेजा. You've heard this story before.
आपने शायद ये कहानी सुनी पहले.
They said we've tried everything.
और उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ प्रयास कर लिया.
We preached the gospel.
हमने सुसमाचार प्रचार किया.
We beat the drums.
हमने घोड़े बजाए.
We gave out the tracts.
हमने बॉडी टच tracts.
We knock on the door.
हमने लोगों के दरवाजे खटखटाए.
We sing the song.
हम गाने गाते हैं.
We keep preaching.
हम प्रचार करते हैं.
We tried everything. Nothing works.
कुछ उम्मीद हो रहा है.
What shall we do?
क्या करें हम?
William Booth sent back two words.
और विलियम बूथ ने वापस दो शब्द उसके पास भेजे.
Try tears. Try tears.
उसने कहा आंसुओं को इस्तेमाल करो. आंसुओं को इस्तेमाल करो.
What did he mean?
मतलब क्या मतलब ही कहने का?
Love.
Great.
Compassion.
There.
Listen carefully.
ध्यान से बात करो.
Sometimes love is like the needle.
कभी कभी
it pulls the thread of truth.
कभी कभी प्रेम एक उस सूजे सुई के समान होती है जो सत्य के धागे को घसीट कर लेके जाती है. ठीक है?
I told you before.
मैंने पहले बताया.
Have you ever tried to get a thread and stick it in a piece of cloth? Just a thread?
आप कभी ऐसी कोशिश करिएगा, खाली धागा लीजिएगा और धागे को कपड़े में डालने की कोशिश करिएगा. कभी क्या आपने कोशिश किया?
What do you need?
आपको क्या चाहिए कपड़े में?
You need a needle.
आपको एक सुई चाहिए ना?
To open the door.
वो रास्ता खोलेगी.
To open the way.
और दरवाजा खोलेगी.
To lead the truth.
ताकि सत्य को आगे लेकर
जाए. Paul says, speak the truth in love.
पौलुस कहता है कि सत्य को बोलो प्रेम में होकर.
With love.
प्रेम के साथ.
With compassion.
दया के साथ.
With emotion.
और भावना के साथ.
With feeling.
स्नेह के साथ.
And maybe God will open the door.
और हो सकता है परमेश्वर दरवाजे खोल दे.
Paul's life.
Paul ka jeevan.
True purity.
Sachcha shuddhata.
Deep affection.
Gehra sneh.
I told you before.
Humne pehle bataya aapko.
I was a young pastor.
मैं एक जवान बालवान था.
I had a little church.
मेरे पास एक छोटी कलीसिया थी.
I was a very fervent preacher.
और मैं बहुत जोशीला प्रचारक था.
I preached the truth.
मैं सत्य को बोलता था.
I preached three times on Sunday.
मैं रविवार को तीन बार प्रचार करता था सत्य को.
And what I said was right.
और जो मैं प्रचार करता था वो सही था.
And I meant it.
और मैं
हाँ एक exhorting the people.
और मैं लोगों को उत्साहित करता था.
And I admonished the people.
और मैं लोगों को डांटता भी था.
After 1 year, no change, no fruit, no response. I asked my wife,
what's wrong?
I'm preaching the truth. This is what she said. They know you don't really love them. Listen carefully. If you don't have love, it profits you nothing. Who do you love? How do they know? What is the evidence? What did Paul say? Look at my life.
Paul ने कहा मेरे जीवन को देखो.
And look at my love.
और मेरे प्रेम को देखो.
Love is something you can see.
प्रेम एक ऐसी चीज है जिसको आप देख सकते हैं.
It's something you can hear.
एक ऐसी चीज है जिसको आप सुन सकते हैं.
And it's something you can feel.
और एक ऐसी चीज है जिसको आप महसूस कर सकते हैं.
Paul said, "You saw my love."
और पॉल कहा तुमने मेरे प्रेम को देखा.
How do you see love?
आप कैसे प्रेम को देख सकते बताइए.
Love is demonstrated.
अब प्रेम तो प्रदर्शित किया जाता है.
So as a young preacher, I got on my knees.
तो एक जवान पासवान नाते में अपने घुटनों पे हो गया.
And I began to preach. Pray, pray.
मैंने प्रार्थना करना आरंभ किया.
God give me your love.
अब प्रभु जी मुझे अपना प्रेम.
God give me your love.
प्रभु जी मुझे अपना प्रेम दीजिए.
Break my heart.
मेरे हृदय को तोड़ दीजिए.
Give me tears.
मुझे आंसू दीजिए.
Because by nature I have the emotion of a rock.
क्योंकि मेरे स्वभाव के अनुसार मेरी जो भावना है वो बिल्कुल पत्थर के समान भावना है मेरे अंदर.
You ever seen a rock?
आपने कभी कोई पत्थर देखा आपने आज तक कभी? कोई चट्टान देखा आपने आज तक?
Listen carefully.
ध्यान से बात करो.
If you have a heart like a rock,
अगर आपका हृदय एक पत्थर के समान है,
you need to pray for the power of the fire of the Spirit of God to melt your heart.
आपको प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य की आग आपके हृदय को पिघला दे.
Because if you want to get into men's hearts,
क्योंकि अगर आप लोगों के हृदय में घुसना प्रवेश करना चाहते हैं,
if you want to get into their conscience,
अगर आप उनके विवेक में घुसना चाहते हैं,
you got to have purity of life,
तो आपके अंदर जीवन की शुद्धता होनी चाहिए,
and love in the heart,
और आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए.
Any question?
कोई प्रश्न है आपके क्या?
You understand what we say?
आप समझ रहे हैं?
This is very simple.
बहुत ही सामान्य बात है ना?
But very important.
लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात.
We can only survey this briefly.
हम इसको केवल संक्षिप्त रूप से देख सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं.
Any question?
कोई प्रश्न है आपके पास?
Where is the first place we ought to begin to show and express love?
और कौन सी वो जगह है कहे कि जब सबसे सर्वप्रथम जगह है जहां पर मैं प्रेम को प्रदर्शित करना आरंभ करूं. कौन सी पहली जगह? सबसे पहली जगह.
What context?
किस संदर्भ में? किस संदर्भ में? किस जगह के संदर्भ में?
जैसे अभी कलीसिया से प्रेम किया वैसे हम
Where?
Family.
Yeah.
Wife.
Family.
परिवार.
Where's the second place?
दूसरी जगह कहाँ है? परिवार के पास दूसरी जगह.
The church.
कलीसिया.
Where's the third place?
तीसरी जगह कहाँ है? समाज.
In the world.
संसार में बाहर पड़ोसी में.
This is simple.
आसान है, साधारण सी बात है.
So I want to give you some homework.
मैं आपको कुछ क्या काम देना चाहता हूँ.
Go home.
घर जाइए.
Ask your wife.
अपनी पत्नी से पूछिए.
I know Indian men don't do this.
मुझे मालूम है भारतीय आदमी लोग ऐसा नहीं करते.
But try this.
लेकिन कोशिश करिए.
I told you before.
मैंने कह दिया था आपके.
Ask your wife.
अपनी पत्नी से पूछिए.
Do you think I love you?
Do you think? क्या तुम सोचते हो तुझे प्रेम करता हूँ?
You love your wife?
आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं?
Now think for a minute before you answer.
इससे पहले क्या पता थी एक क्षण तो सोचिए और जाके पूछिएगा जरूर.
According to the biblical definition of love,
बाइबल के अनुसार की जो परिभाषा है प्रेम की, बाइबल के अनुसार उसके अनुसार उत्तर दिए.
You love your wife.
क्या अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं?
You love your children.
क्या अपने बच्चों से प्रेम करते हैं?
You love the brethren.
क्या अपने भाइयों से प्रेम करते हैं?
You love sinners.
क्या आप पापियों से प्रेम करते हैं?
Paul said, look at me.
पॉल कहते मेरी ओर देखो.
He had love and compassion.
उसके अंदर प्रेम था, उसके अंदर करुणा थी.
Number three.
तीसरी बात.
We're talking about Paul's life.
हम पॉल के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं.
He had sacrifice. Sacrifice. Is this right?
Yeah.
And hard labor and self-denial.
तीसरी बात, पौलुस के पास, पौलुस के अंदर क्या, उसके चरित्र में क्या था, उसके जीवन और चरित्र में क्या था? त्याग,
हार्ड वर्क,
कठिन परिश्रम
and self-denial.
और स्वयं का इनकार.
Again, this is very simple but very important.
बहुत ही सादा बात है लेकिन बहुत ही जरूरी बात है. त्याग, त्याग, कठिन परिश्रम, स्वयं का इनकार. त्याग, कठिन परिश्रम, स्वयं का इनकार. तीन बातें, त्याग, कठिन परिश्रम, स्वयं का इनकार.
And this meant he was willing to suffer.
और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो दुख उठाने में तैयार था. वो दुख उठाने में तैयार था.
Paul's whole life was a life of sacrifice, self-denial and suffering.
और पौलुस का संपूर्ण जीवन स्वयं का इनकार करना, दुख उठाने से चिरपरिचित था.
God chose him to preach the gospel to the Gentiles.
परमेश्वर ने तो चुन लिया कि वो अन्य जातियों के बीच सुसमाचार का प्रचार करे.
And he chose him for another reason.
और उसे एक और कारण के लिए उसे चुन लिया परमेश्वर ने. याद है आपको?
And what was that second reason?
और क्या दो कारण था परमेश्वर ने चुन लिया आपको? पहला तो अन्य जाति के बीच प्रचार करने के लिए, दूसरा दुख
उठाने.
आपने सुना उस बात को?
Many preachers are glad God called them to preach the gospel.
और ज्यादा प्रचारक इस बात से खुश रहते हैं कि परमेश्वर ने बुला दिया उनको प्रचार करने के लिए.
But there's another part of the calling.
लेकिन बुलाहट का एक दूसरा हिस्सा भी है मसीह सेवा में.
It is sacrifice.
वो है त्याग, बलिदान, दुख उठाना.
Hard work.
वो है कठिन परिश्रम.
It is self-denial.
वो है स्वयं का इनकार करना.
And it may even mean some suffering.
और इसका यही मतलब है कि दुख उठाना, सहना की आवश्यकता.
In fact, suffering is a necessary part of the gospel ministry.
और बल्कि सुसमाचार ये सेवा का एक अभिन्न अंग है, दुख उठाना या परेशानी.
Let's look at several verses.
आइए हम कई पदों को देख लेते हैं.
Very quickly here.
जल्दी जल्दी देख लेंगे.
1 Corinthians.
पहला कुरिन्थियों.
And chapter 4.
और उसका चौथा अध्याय.
Verse 9 and following.
और उसका नवा पद आगे देख लीजिए आप हमारे साथ. पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय उसका नवा पद आगे.
Paul said, I thank God has exhibited us as apostles of men condemned to death.
और पौलुस कहता है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने हमें प्रेरितों को जरूर ध्यान में रखा है जिनको मृत्यु दंड दिया गया.
We are spectacles of the world, the men and the angels.
हम समस्त सृष्टि और सदस्य और मनुष्य के तमाशा बन गए हैं.
And now the Corinthians didn't want to suffer.
और जो कुरिन्थियों के लोग थे वो लोग दुख नहीं उठाना चाहते थे.
They believed health and wealth and prosperity.
वे लोग विश्वास करते थे स्वास्थ्य में और समृद्धि में और धन में.
If you follow God, he's going to bless you.
वो लोग ये कहते थे अगर तुम यीशु परमेश्वर के पीछे करोगे तो तुम्हें वो आशीष से तो भर देगा.
And Paul says verse 9, notice what he says verse 10.
और यहाँ पे ध्यान दीजिए पौलुस क्या कहता है 9:10 में पाते
हैं। We are fools for Christ's sake.
वो कहता हम तो मसीह के निमित्त मूर्ख
हैं। Oh, but you are prudent and wise.
लेकिन तुम तो मसीह में बुद्धिमान
हो। We are weak, but you are strong.
अरे हम तो निर्बल लेकिन तुम बहुत बलवान
हो। You are distinguished, but we are without any honor.
अरे तुम तो बड़े आदरणीय हो परंतु हमारा तो आदर ही नहीं है।
Now he's speaking sarcastically.
और यहाँ पे जब ये बात कर रहे तो ये व्यंग्यात्मक रूप से बात कर रहा है।
He said, you have it easy.
वो कह रहे तुम्हारे लिए बड़ा
आसान है। You are exalted.
तुम तो बहुत ऊंचा उठना चाहते
हो। You are already reigning with Christ.
आज तो तुम मसीह से पहले ही ऊंचे पे उठे
हो। But we're fools.
और हम तो बेवकूफ।
We have dishonor.
और हम तो आदरणीय
नहीं। We have shame.
और हमें तो शर्म
है। We have weakness.
और हमारे पास कमजोरी
है। Verse 11.
और 11 पद में।
We're hungry and thirsty.
वो कहता हम भूखे प्यासे हैं।
We're poorly clothed.
और हम चितड़ों में हैं।
We're roughly treated.
हमारा बुरा व्यवहार क्या
है? We're homeless.
और हमें मारे मारे फिरते हैं।
We work with our own hands.
हम अपने हाथों से कठिन परिश्रम करते हैं।
We are reviled, we bless.
और जब हमारी निंदा होती है तो हम आशीष देते हैं।
We are persecuted, we endure.
और जब हम सताए जाते तो हम सहते हैं।
When we slander, we try to reconcile.
और जब हम बदनाम किया जाते तो हम मेल करने का प्रयास करते हैं।
We have become the scum of the earth, the dredges of all things.
हम तो संसार का मैल और सब वस्तुओं का कूड़ा करकट बन गए हैं।
When you clean up the kitchen.
और जब आप किचन को साफ करते हैं आप लोग।
You sweep the floor.
तो आप झाड़ू लगाते हैं नीचे जमीन पे।
Some dirt comes up easy.
और कुछ कुछ गंदगी होती है आसानी से उड़ जाती है।
But some dirt is down deep.
लेकिन कुछ गंदगी होती है जो बिल्कुल जमीन से चिपक गई होती है।
What do you have to do?
तो उस जमीन को उस गंदगी को क्या करना पड़ता है?
A strong brush.
आपको एक मजबूत ब्रश लेना पड़ता है कड़ा
वाला। Get it down.
और नीचे जाकर उसको रगड़ना पड़ता है।
Paul says that's what we are.
और पौलुस कह रहे हैं कि उस तरह की गंदगी हम बन गए हैं।
With the lowest scum.
जो गंदगी के भी नीचे सबसे नीचे सतह की गंदगी वो हम बन गए।
And if you're going to follow Christ,
और अगर आप यीशु मसीह पर चलेंगे,
you cannot expect an easy time,
तो आप एक आसान जीवन नहीं आशा कर सकते।
You cannot expect the blessings of this world,
आप इस संसार के आशीष को नहीं आशा कर सकते।
You cannot look for material benefits,
आप केवल भौतिक फायदे के लिए नहीं सोच सकते।
You must be willing to take up your cross and follow Christ,
आपको यीशु मसीह के पीछे चलने के तैयार होना पड़ेगा अपना क्रूस उठाकर।
You must be willing to be persecuted and despised,
आपको सताए जाने के लिए और तिरस्कारे
आपका
परिवार इस संसार सबसे नीचे की गंदगी है।
You're not willing to pay that price.
लेकिन अगर आप इस कीमत से चुकाने तैयार नहीं हैं,
you're not willing to follow Christ.
अगर आप यीशु मसीह पीछे चलने तैयार नहीं हैं,
he hung naked upon a cross.
और वो उस क्रूस के ऊपर बिना कपड़े के निवास रखा रखा।
He suffered.
और वो से जो कहते कि सही।
Paul says, I follow Christ.
और पौलुस कहते कि मैं यीशु मसीह पीछे चलता हूँ।
You follow me.
तो मेरे पीछे चलो।
You cannot look for benefits in this life.
हम तुम्हें जीवन में फायदे या अपने ही अच्छाई के केवल भलाई को नहीं ढूंढ सकते हो।
Chapter 9.
नवा अध्याय।
We're talking about Paul's willingness to sacrifice and suffer.
पौलुस कह रहे हैं प्रभु का नवा अध्याय हम यहाँ पे बात करें पौलुस की इस इच्छा के लिए कि वो अपने तैयार करने के लिए तैयार है।
He was characterized by a life of self-denial.
उसका जीवन इस बात से पहचाना जाता था कि वो स्वयं का निरंतर इनकार करता था।
He was God's athlete.
वो परमेश्वर के लिए एक धावक था।
And in chapter 9 he talks about that.
और नवे अध्याय में वो इसकी बात करता है।
Verse 24.
और 24वां पद कहता है।
I know that those who run in a race all only one gets the prize.
वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि दौड़ते तो दौड़ते बहुत है लेकिन एक ही को पुरस्कार मिलता है।
Run in such a way that you may win.
वो कहता है इस प्रकार से दौड़ो कि तुमको पुरस्कार मिले।
Verse 25.
25 पद में।
Everyone who competes in the game exercises self-control in all things.
वो कहता है जो कोई भी खेल प्रतियोगिता में भाग लेता है वो हर एक बातों में संयम रखता है।
Why do they do it?
क्यों करते हैं वो लोग ऐसा?
They get a perishable wreath.
वो जो नष्ट होने वाले मुकुट के लिए ऐसा करते हैं।
But we have an imperishable one.
लेकिन हमारे पास एक नाश होने वाला मुकुट है।
26.
उसे 26 पद देख
लीजिए। I run in such a way with not without aim.
मैं इस तरह दौड़ता हूँ जैसे कि लक्ष्यहीन ना हो।
I box in a way is not beating the air.
मैं तो हवाई मुक्केबाजी नहीं करता हूँ।
I buffet my body and make it my slave.
मैं तो अपने देह को यंत्रणा दे करके अपना दास बना करके अपने नियंत्रण रखता हूं.
After I preach to others, I may be disqualified.
कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को तो प्रचार करूं और खुद अयोग हो जाऊं.
Paul's life characterized by self-denial.
और पौलुस के जीवन खुद के त्याग से ही पहचाना जाता था.
Other men live for the world.
बाकी लोग तो संसार में जी रहे हैं.
You cannot.
आप नहीं जी सकते संसार के
लिए. Other men want the things of the world.
बाकी लोग तो संसार की वस्तुओं को चाहते
हैं.
आप नहीं कर सकते.
Other men live for money.
और बाकी लोग तो पैसे के लिए
जी रहे हैं.
आप नहीं कर सकते ऐसा.
Other men live for pride.
और बाकी लोग तो अपने घमंड के लिए जी रहे
हैं.
आप नहीं कर सकते ऐसा.
We're not living for this life.
हम इस संसारी जीवन के लिए नहीं जी रहे.
We've given up the world.
हमने संसार को छोड़ दिया है.
We've given up all things.
हमने सब कुछ त्याग दिया है.
We're God's athlete.
हम परमेश्वर के धावक हैं.
Soldier.
हम परमेश्वर के सैनिक हैं.
Paul says, I buffet my body.
अब पौलुस कहते हैं कि मैं अपने शरीर को यंत्रणा देता हूं.
I discipline my mind.
मैं अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में रखता हूं.
I've given up all things.
मैंने सारी चीजों को त्याग दिया है.
And he was willing to suffer.
और वो दुख उठाने के लिए तैयार था.
Are you willing to be poor?
क्या आप गरीब होने के लिए तैयार हैं?
Are you willing to be nobody?
क्या आप कुछ नहीं होने के लिए तैयार
हैं? Are you willing to be unrecognized?
क्या आप तैयार हैं कि आप कोई पहचाने भी नहीं?
Are you willing to pay every price?
क्या आप संपूर्ण कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं?
Are you willing to take up your cross and follow Christ?
क्या आप अपना क्रूस उठाकर ईश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हैं?
Paul says, follow me.
Paul कहता है मेरे पीछे आओ.
I'm following Christ.
मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा
हूं. He took up his cross.
उसने अपना क्रूस उठा लिया.
That was the cross of redemption.
वो था छुटकारे का क्रूस.
That was the cross of salvation.
वो था उद्धार का क्रूस.
But there's another cross.
लेकिन एक और क्रूस है.
There's a second cross.
दूसरा क्रूस.
And what cross is that?
वो कौन सा क्रूस है वो?
That's your cross.
वो आपका मेरा हमारा क्रूस है वो.
It's not a cross of salvation.
वो उद्धार का क्रूस नहीं है.
It's a cross of discipleship.
वो है शिष्यता का क्रूस.
It's a cross of self-denial.
वो है स्वयं के नकारने का क्रूस.
It's a cross of obedience.
वो है आज्ञाकारिता का क्रूस.
That cross does not save you.
वो क्रूस आपको बचाता नहीं है.
His cross saves you.
ये उद्धार वाला क्रूस हमें बचाता है.
Man has seen the cross of Christ.
अगर किसी व्यक्ति ने मसीह के क्रूस को देख लिया है.
Out of love for Christ, he will take up his own cross.
मसीह के प्रेम के वजह से वो अपने स्वयं का क्रूस उठा लेगा.
And Paul suffered for the gospel.
और पौलुस ने सुसमाचार के लिए बड़ा ही दुख उठाया.
Look in 2 Corinthians.
दूसरे कुरिन्थियों में देख लीजिए.
We're talking about Paul's life.
हम यहाँ पे पौलुस के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं.
Holiness.
पवित्रता.
Love.
प्रेम.
Sacrifice.
त्याग.
Chapter 4.
चौथा अध्याय.
Verse 7.
सातवां पद.
We have this treasure in earthen vessels.
हम मिट्टी के पात्रों में ये धन रखे हुए हैं.
So that the surpassing greatness of the power be of God and not from ourselves.
ताकि ये जो सामर्थ्य असीम महानता हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से ठहरे.
Verse 8.
आठवां
पद. We are afflicted in every way, but we're not crushed.
हम चारों ओर से क्लेश रहते हैं परंतु मिटाए नहीं आते.
We're perplexed, but we're not despairing.
हम निरुपाय तो हैं परंतु निराश नहीं होते.
We're persecuted, but we're not forsaken.
हम सताए जाते हैं लेकिन त्यागे नहीं.
We're struck down.
हम गिराए जाते हैं.
But we're not destroyed.
लेकिन नाश नहीं हुए.
We carry about in the body the dying of Jesus.
हम यीशु की मृत्यु को सदा अपनी देह में लिए फिरते हैं.
Why?
क्यों?
So that the life of Jesus may be manifested in our body.
ताकि यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो जाए.
Now there's a biblical principle.
यहाँ पे एक बाइबल पर आधारित सिद्धांत
है. It cannot be denied.
ये इसको नकारा नहीं जा सकता.
Unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it cannot bear fruit.
जब तक एक गेहूं का दाना इस भूमि पे गिर के मर नहीं जाता तब तक वो फल नहीं ला सकता.
लाइफ थ्रू डेथ.
जीवन मृत्यु के द्वारा.
फ्रूटफुलनेस थ्रू सैक्रिफाइस.
और बहुत कुछ फल लाना त्याग के ही द्वारा.
देयर आर नो शॉर्टकट्स.
और छोटे मोटे रास्ते नहीं.
देयर इज नो इजी वे.
कोई आसान रास्ता नहीं है.
पॉल सेज दिस.
पॉल ये कहता है.
आई कैरी अबाउट इन माय बॉडी द डाइंग ऑफ क्राइस्ट.
मैं अपने शरीर में यीशु मसीह के मरने को लेकर के चर्चा करता हूं.
आई डाई डेली.
मैं प्रतिदिन मरता हूं.
व्हाट डिड ही मीन?
क्या आप कहने का मतलब है?
आई हैव डाइड विद क्राइस्ट.
वो कहते हैं मैं मसीह के साथ मर गया.
आई डाइड टू दिस वर्ल्ड.
मैं संसार से मर गया.
आई डाइड टू मनी. I died to fame. I died to myself. I've given up my life. And when I give up my life, the life of Christ, His resurrection, and go through my body, there is a principle for all preachers. You must die to live.
आपको मरना होगा तभी आप जी सकते हैं.
You must die to bear fruit.
आप जब तक नहीं मरेंगे तब तक फलवान नहीं हो सकते.
There's no easy way.
कोई आसान तरीका नहीं इसके अलावा.
There's no easy way.
कोई और आसान तरीका नहीं इसके अलावा.
This is what Paul
said. यही पॉल कह रहा है यहाँ पे.
He said we are crushed.
वो कह रहे हैं हम दबाए जाते हैं.
We are struck down,
हमें मारा जाता है.
But we're not destroyed.
लेकिन हम मिटा नहीं जाते.
This is careful.
और ध्यान से इस बात को.
Someone comes to your church.
मान लिया कि कलीसिया में कोई आए.
And they preach this.
और वो ये प्रचार करे.
If you live by faith,
अगर तुम विश्वास के द्वारा.
If you're under grace,
अगर तुम अनुग्रह के आदमी
हो. You'll never have any problem.
तो तुम्हें कभी कोई समस्या नहीं होगी.
You'll never be poor.
तुम कभी गरीब नहीं होगी.
You'll never be sick.
तुम कभी बीमार नहीं होगी.
Tell that to Paul.
और ये बात आप पौलुस को जाकर बताइए. ध्यान से सुनिए आपको.
If you're going to preach,
अगर आप प्रचार करने आ रहे
हैं and you're going to serve God,
और आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं,
it's going to cost you.
तो आपको संपूर्ण सब कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी.
But if you have known the love of God in Jesus Christ,
अगर आपने परमेश्वर के प्रेम को यीशु मसीह में होकर के जान लिया है.
Paul said, "For His sake, I have given up all things."
पॉलुस कहता है कि उसके खातिर उसके वास्ते मैंने सब कुछ को त्याग दिया.
And I'm willing to suffer.
और मैं सहने के तैयार हूं, दुख उठाने के तैयार हूं.
Suffering is part of the gospel ministry.
सुसमाचार ये सेविका का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, दुख उठाना सहना.
Now that doesn't mean you're going to be beaten.
इसका ये मतलब नहीं कि आपको मार पीटा जाएगा.
That doesn't mean someone's going to cut off your head.
इसका ये मतलब जरूरी नहीं है कि कोई आकर के आपका गला ही उड़ा देगा.
That doesn't mean somebody's going to burn down your church.
ये जरूरी नहीं है इसका मतलब कि कोई आकर के आपके की कलीसिया की बिल्डिंग को जला दे.
But there's different kinds of suffering.
लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरह के दुख उठाना होता है.
There's spiritual pain.
कुछ लोग है आत्मिक दुख होता है.
इमोशनल सफरिंग.
और कुछ लोग भावनात्मक दुख होता है.
डीप बर्डन्स इन द हार्ट.
और कुछ कुछ लोग हृदय में बड़े गहरे बोझ होते हैं.
इफ यू आर कॉल्ड टू प्रीच द गॉस्पेल,
अगर आपको बुलाया गया तो सोचा प्रचार करने के लिए.
यू आर कॉल्ड टू पे अ प्राइस,
तो आपको बुलाया गया कीमत चुकाने के लिए.
अदर मैन मे नॉट बट यू मस्ट.
हो सकता है अगले लोगों कीमत नहीं चुकाना, लेकिन आपको कीमत चुकाना ही चुकाना है.
Paul said, "I follow Christ."
क्योंकि पॉलस कहता है मैं मसीह के पीछे पीछे चलता हूँ.
You follow me.
और तुम मेरे पीछे चलो.
Look in chapter 11.
आइए यहाँ पे 11 अध्याय में देख लीजिए मेरे साथ.
Chapter 11.
11 अध्याय.
Now let me ask you a question.
मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ.
Chapter 11, 2 Corinthians.
दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय.
Verse 23 and following.
उसका 23 पद से आगे देखिए. दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय से 23 पद से आगे देखिए.
Have you ever read anything else like this in your whole life?
आपने क्या कभी इस तरह की चीज अपने जीवन में कहीं और पढ़ी है?
When God told Ananias to go and lay his hands on Paul.
जब परमेश्वर ने हनन्याह से कहा कि तुम जाकर के पौलुस के ऊपर अपना हाथ रखो.
He said, "For I must show him how much he must suffer."
और परमेश्वर ने कहा कि क्योंकि मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि कितना उसे मेरे नाम के लिए सहना पड़ेगा.
And when you read verses 23 and following,
और जब आप यहाँ पे 23 पद और उसके आगे पढ़ते हैं,
it is almost impossible to understand.
और ये समझना बिल्कुल असंभव सा हो जाता है.
This is Paul fulfilling and experiencing what God prophesied about him.
यहाँ पे परमेश्वर ने जो कुछ भी पौलुस के बारे में भविष्यवाणी की थी वो यहाँ पे पूरी हो रही है और उसका वो अनुभव कर रहा है एक तरह से.
And I encourage you when you get discouraged in ministry.
और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब आप सेवा में निरुत्साहित हो जाएं,
read this passage.
तो आप इस पद को पढ़िए जाकर के.
Look in chapter 6.
यहाँ पे छह अध्याय को देखिए यहाँ.
We're looking at Paul's life.
हम यहाँ पे पौलुस के जीवन को देख रहे हैं.
2 Corinthians chapter 6.
दूसरा कुरिन्थियों का छठा अध्याय.
Verse
4. और यहाँ पे चौथा पद को देख लीजिए.
In everything, commending ourselves as servants of God. In endurance, affliction, hardship, and distress. In beatings, imprisonment, tumult, labor, sleeplessness, hunger.
Verse 6. और तो छह पद.
But in purity, knowledge, patience, and kindness.
और सत्य के वचन में, परमेश्वर सामर्थ में और आदर में, प्रेम में.
Paul experienced all kind of difficulties.
पौलुस ने हर तरह की मुश्किलों का सामना किया.
Verse 8. We had glory, but we're dishonored.
हमारे पास महिमा है लेकिन हमें आदर
किया जाता है. Evil report and good report.
हमारे पास अच्छी खबर है और बुरी खबर भी है.
We are seen as deceivers, but we're really true.
हमें धोखा देने वाले के समान समझा जाता है लेकिन वास्तव में हम
सत्य हैं. We're unknown to the world, but we're known to God.
हमें लोगों के सामने हम ना जाने जाते लेकिन परमेश्वर द्वारा जाने जाते हैं.
We are dying.
हम मर रहे हैं.
Yet the whole we live.
लेकिन फिर भी हम जी रहे.
We are punished.
हमें मारा सताया जाता है लेकिन हम मारे नहीं जाते.
Verse 10.
हम दुख से भरे हुए
but we're always rejoicing.
लेकिन फिर भी हम आनंद मनाते हैं.
We're poor,
हम गरीब हैं
but we make many rich.
लेकिन हम बहुतों को अमीर बनाते
हैं. We have nothing,
हमारे पास कुछ भी नहीं
but we possess all things.
लेकिन फिर भी हम ऐसे मानो हमारे पास बहुत कुछ.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात को.
One look is from the look of the world.
एक एक तरह यहाँ पे दृष्टि तो संसार की दृष्टि है.
The other view is from the view of God.
लेकिन दूसरा दृष्टिकोण परमेश्वर की ओर से.
According to the world,
संसार की ओर से.
We have dishonor.
अब हमारे पास अनादर है.
We have evil report.
हमारे नाम खराब है.
We are deceivers.
हम धोखेबाज बन
जाते हैं. We are unknown.
हमें लोग नहीं जानते.
We are dying.
हम मर रहे हैं.
We are punished.
हमें सामना दिया
है. Sorrowful.
हम दुख से भरे हुए.
We are poor.
हम गरीब हैं.
But according to God.
लेकिन परमेश्वर के अनुसार.
Listen carefully.
और ध्यान सुनिए बात को.
According to God,
परमेश्वर के अनुसार.
We are rich,
हम बहुत अमीर हैं.
We are rejoicing,
हम आनंद मना रहे हैं.
We are living,
हम जी रहे हैं.
Now listen carefully.
और ध्यान सुनिए बात को.
You can have an easy ministry,
आपके पास एक आसान सेवा हो सकती है.
Use the methods of the world.
आप संसार के तरीकों को उपयोग कर सकते हैं.
Preach an easy gospel.
और आप एक आसान सुसमाचार लोगों को सुना सकते हैं.
Don't call men to holiness.
और आप लोगों को पवित्रता के लिए मत बुलाइए.
And you'll have a big church.
और आपके पास एक बड़ी कलीसिया होगी.
And everyone will love you.
और सब लोग आपसे प्रेम करेंगे.
But if you preach the truth.
लेकिन अगर आप लोगों को सत्य बताएंगे.
Call men to repentance.
अगर आप लोग कहेंगे पश्चाताप करो.
Call men to holiness.
और अगर आप लोग कहेंगे पवित्र बनो.
If you stand for Christ,
अगर आप मसीह के लिए खड़े होंगे.
You'll be poor.
तो आप गरीब होंगे.
You'll be unknown.
तो लोग आपको नहीं जानेंगे.
You'll be dishonored.
लोग आपका अनादर करेंगे.
You'll suffer.
और आपको दुख उठाना पड़ेगा.
You'll die.
आप मर भी जाएंगे.
According to the world.
संसार की दृष्टि में, उसकी दृष्टिकोण में, उसकी नजरों में.
If you stand for Christ,
लेकिन अगर आप मसीह के लिए खड़े होंगे और सत्य को प्रचार करेंगे फिर आप अमीर होंगे.
Not according to what Joseph Prince says.
और उसके अनुसार नहीं जो कि जोसेफ प्रिंस कहता है. उसके अनुसार नहीं.
But according to what Paul says.
लेकिन उसके अनुसार जो पॉलस कहता है यहां पर.
This is true riches.
ये है असली अमीरी. ये है असली पैसा.
We have this treasure in earthen vessels.
हमारे पास एक ऐसा खजाना है जो मिट्टी के पात्रों में है.
God has given you a treasure.
परमेश्वर ने आपको एक खजाना दिया है.
He has given you a gift.
उसने आपको एक वरदान दिया है.
He has given you a ministry.
उसने आपको एक सेवा दी है.
And you cannot compromise.
और आप बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकते.
You cannot follow the world.
आप संसार के पीछे नहीं जा सकते.
You cannot follow the popular preachers.
आप जो बहुत ही प्रसिद्ध प्रचारक लोग उनके पीछे नहीं जा सकते.
Follow Paul.
पौलुस के पीछे चलिए.
He follows Christ.
वो जो यीशु मसीह के पीछे चल रहा
है. He says this.
और वो ये कहता है.
God calls you to sacrifice and self-denial.
परमेश्वर आपको बुला रहा है बलिदान के लिए त्याग करने और स्वयं का इनकार करने के लिए. मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं.
Willing to be poor?
क्या आप गरीब होने में तैयार हैं?
Willing to be unknown?
क्या आप अनजान होने में तैयार हैं?
Willing to be sorrowful?
क्या आप दुख उठाने में तैयार हैं?
Willing to be a nobody?
क्या आप कुछ नहीं बनने के तैयार हैं?
Willing to have no security in this world?
क्या आप इस जीवन में कुछ भी सुरक्षा ना पाने के तैयार हैं?
One time, some people came to Jesus and said, "Lord, we'll follow you wherever you go."
और एक समय तक कुछ लोग इस प्रति किया और कहा, प्रभु हम आपके पीछे चलेंगे जहां जहां आप.
What did Jesus say? That's wonderful. Come on. What did he say? The foxes have holes. The birds of the air have nests. The Son of Man has nowhere to lay his head. If you follow me, no guarantee, no earthly security, no worldly prosperity. Take up your cross. Follow me. I'm going to Jerusalem. And I'm going to die. God called you to preach. God has sent His love into your heart. You'll be willing to make every sacrifice.
So फिर आप हर तरह के त्याग को करने के लिए तैयार हो जाएंगे.
You'll be willing to work hard.
और आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएंगे.
You'll be willing to deny yourself.
आप अपना इनकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे.
If God calls you to suffer, you'll be willing to suffer.
अगर परमेश्वर आपको बुलाएगा सहने के लिए दुख उठाने के लिए तो आप वो भी तैयार हो जाएंगे सहने के लिए.
This is true Christianity.
ये है असली मसीहत.
This is true Christian ministry.
ये है असली मसीही सेवकाई.
Don't listen to the people
जो टीवी पे लोग बोलते उनको मत सुनिए.
Don't let false teaching into your church.
अपने कलीसिया में गलत शिक्षा को मत आने दीजिए.
Don't compromise your conviction.
अपने जिन बातों को आप मानते हैं उन पे आप समझौता मत करिए.
Be willing to pay the price.
कीमत चुकाने के तैयार
हो. Take up your cross.
अपना क्रूस उठा लीजिए.
Follow Christ.
पति के पीछे.
Every day.
प्रतिदिन.
All your life.
अपना पूरा जीवन भर.
You young men.
आप जवान भाई.
What are you living for?
आप किस चीज के लिए जी रहे
हैं? What do you want?
क्या चाहते हैं?
Other Indian young men.
जो बाकी भारतीय जवान भाई.
Now, they want a car. They want a house. They want a wife. They want money. Now, there's nothing wrong with those. But if you live for those things, you cannot follow God. Because if God has called you to preach, He has called you to holiness, to love, and to self-denial. Follow Paul.
Paul के पीछे चलिए.
Because he followed Christ.
क्योंकि वो मसीह के पीछे चला.
I'm almost 64 years old.
मैं लगभग 64 साल का हूँ.
And I haven't suffered much.
और मैंने ज़्यादा दुख नहीं उठाया.
But out of love for Christ, I have made some sacrifices.
लेकिन मसीह के प्रेम की वजह से मैंने कुछ बलिदान किए हैं.
And many people think I'm a fool.
और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूँ.
Now listen carefully.
और ध्यान से सुनो.
Death,
मृत्यु,
and eternity,
और अनंत काल,
will reveal the fool.
वो दिखाएगा असली मूर्ख कौन है. मृत्यु और अनंत काल दिखाएगा, साबित करेगा कि असली मूर्ख कौन है.
Either must be a fool now,
या तो आप अभी मूर्ख बन जाइए,
or a fool later,
या फिर बाद में अनंत काल में मूर्ख बन जाइए.
There's a principle.
एक सिद्धांत है.
Death before life.
इससे पहले जीवन आए मृत्यु होना चाहिए.
The cross before the crown.
इससे पहले कि मुकुट मिले क्रूस होना चाहिए.
If you live according to that principle,
अगर आप इस सिद्धांत के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे,
motivated by the love of Christ,
मसीह के प्रेम के द्वारा प्रेरित होकर,
God will use you.
परमेश्वर आपको उपयोग करेगा.
Well, let's pray.
आइए हम लोग प्रार्थना करें.